नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नाटरी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। बर्न बुक अ टेक लव स्टोरी प्रख्यात टेक पत्रकार कारा सुशर की संस्मरणात्मक उद्योग गाथा है। यह पुस्तक सिलिकॉन वैली के उभार को केवल कंपनियों, उत्पादों और बाजार मूल्यांकन की कहानी की तरह नहीं देखती, बल्कि उन व्यक्तियों की कहानी के रूप में प्रस्तुत करती है जिन्होंने इंटरनेट युग का आकार बनाया। स्विशर ने 1990 के दशक की शुरुआत से तकनीक क्षेत्र को कवर किया है और स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क, शेरिल सैंडबर्ग तथा अन्य प्रभावशाली नेताओं का साक्षात्कार लिया है। इसी प्रत्यक्ष पहुंच के आधार पर पुस्तक में निजी संवाद, पेशेवर टकराव और पत्रकारिता के अनुभव जुड़े हैं। इसका मुख्य उद्देश्य तकनीक के वादों और उसके परिणामों दोनों की जांच करना है। स्विशर मानती है कि डिजिटल नवाचार ने उपयोगी बदलाव किए, पर असाधारण धन, शक्ति और प्रशंसा ने कई संस्थापकों को जवाबदेही से दूर भी किया। इसलिए यह न तो तकनीक विरोधी घोषणा पत्र है, न ही सिलिकॉन वैली का उत्सव। यह प्रेम, निराशा, चेतावनी और सार्वजनिक जवाबदेही का मिश्रित वृत्तांत है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले सिलिकॉन वैली का इतिहास व्यक्तित्वों और सत्ता के माध्यम से। पुस्तक की विशेषता यह है कि कारा स्विशर तकनीक उद्योग के इतिहास को निष्पक्ष कालक्रम भर की तरह नहीं लिखती। वे दिखाती है कि कंपनियों के निर्णय अक्सर संस्थापकों और शीर्ष अधिकारियों के स्वभाव, महत्वाकांक्षा तथा निजी असुरक्षाओं से प्रभावित होते हैं। इंटरनेट के शुरुआती दौर में कई उद्यमियों ने सूचना तक पहुंच बढ़ाने, संचार आसान बनाने और बड़े पैमाने पर समस्याएं हल करने के आदर्श प्रस्तुत किए, लेकिन कंपनियां विशाल होने पर वही आदर्श विज्ञापन आधारित मॉडल, डेटा संग्रह, बाजार नियंत्रण और राजनीतिक प्रभाव के प्रश्नों से टकराए। स्विशर के लिए किसी नेता की पुरानी आदतें और संबंध इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे बाद के निर्णयों की दिशा समझने में मदद करते हैं। पुस्तक स्टीव जॉब्स से लेकर मार्क जकरबर्ग और इलॉन मस्क जैसे नामों को तकनीकी मिथक नहीं, प्रभावशाली किंतु त्रुटिपूर्ण मनुष्यों के रूप में रखती है। यह दृष्टि पाठक को संस्थापक केंद्रित संस्कृति की सीमा समझाती है। किसी उत्पाद की उपयोगिता अपने आप में पर्याप्त कसौटी नहीं है। यह भी देखना पड़ता है कि उत्पाद बनाने वाले लोगों के पास कितनी शक्ति है, उन पर कौन निगरानी रखता है और उनके निर्णयों का असर उन लोगों पर कैसा पड़ता है जिनकी उस निर्णय प्रक्रिया में कोई आवाज नहीं होती। दूसरा, निर्भीक टेक पत्रकारिता। निकटता और आलोचनात्मक दूरी का संतुलन। कारा स्विशर अपने पत्रकारिता करियर को पुस्तक के केंद्रीय ढांचे के रूप में इस्तेमाल करती है। वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, दी ऑल थिंग्स डिजिटल सम्मेलन, रिकॉर्ड और पॉडकास्टिंग तक की उनकी यात्रा बताती है कि तकनीक पत्रकारिता कैसे एक सीमांत बीच से सार्वजनिक जीवन की निर्णायक कवरेज बन गई। उनका तरीका शक्तिशाली लोगों से सीधा, कभी कभी असुविधाजनक प्रश्न पूछने का है। वे स्रोतों के निकट रहने को पहुंच का साधन मानती है, पर उस निकटता को प्रशंसात्मक कवरेज में बदलने से इनकार करती है। पुस्तक का महत्वपूर्ण सबक यह है कि पहुंच और स्वतंत्रता के बीच तनाव पत्रकारिता का स्थायी प्रश्न है। जिन कंपनियों के पास धन, जनसंपर्क तंत्र और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा हो, वे आलोचना को दबाने या अपनी भाषा में ढालने की कोशिश कर सकती है। स्विशर का उत्तर तथ्यों की पुष्टि, लगातार रिपोर्टिंग और सार्वजनिक मंच पर कठोर प्रश्न है। फिर भी संस्मरण का निजी स्वर यह भी स्पष्ट करता है कि पत्रकार पूरी तरह अदृश्य पर्यवेक्षक नहीं होता। उसके संबंध, पसंद और संघर्ष उसकी दृष्टि को प्रभावित कर सकते हैं। पाठक को इस पुस्तक को अंदरूनी गवाही और लेखक की स्पष्ट, व्यक्तिपरक आवाज दोनों रूपों में पढ़ना चाहिए। तीसरा, नवाचार के वादे से सामाजिक क्षति तक की जवाबदेही। बर्न बुक का मुख्य तर्क तकनीक के विरोध में नहीं, बल्कि परिणामों के प्रति उदासीन नवाचार के विरोध में है। स्विशर उस उद्योग को याद करती है जिसने दुनिया को जोड़ने, ज्ञान फैलाने और दक्षता बढ़ाने का वादा किया था, पर वे इस प्रश्न को केंद्र में लाती हैं कि जब मंचों का पैमाना अरबों लोगों तक पहुंच जाए, तब गलत सूचना, निष्ठा का शरण, ऑनलाइन उत्पीड़न, प्रतिस्पर्धा पर नियंत्रण और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रभाव जैसी समस्याओं की जिम्मेदारी किसकी है। तेज गति से निर्माण करने का नारा शुरू में उद्यमशीलता का प्रतीक लग सकता है, लेकिन सार्वजनिक अवसंरचना जैसे प्रभाव वाले मंचों पर वही मानसिकता गंभीर नुकसान पैदा कर सकती है। पुस्तक नेताओं की घोषित मंशा और वास्तविक प्रभाव के बीच अंतर पर जोर देती है। अच्छी मंशा उपयोगकर्ता संख्या या व्यावसायिक सफलता हानिकारक परिणामों से मुक्ति नहीं देती। स्विशर के अनुसार उत्तरदायित्व का अर्थ केवल संकट आने पर माफी मांगना नहीं है, इसमें उत्पाद के संभावित दुरुपयोग का अनुमान, स्वतंत्र आलोचना को सुनना, नियमों को बाधा न मानना और शक्ति के साथ अनुपातिक सार्वजनिक दायित्व स्वीकार करना शामिल है। इसीलिए पुस्तक आज के एआई उभार को भी पुराने सबको के संदर्भ में देखने को प्रेरित करती है। चौथा, अत्यधिक धन, प्रशंसक मंडली और वास्तविकता से दूरी। स्विशर बार बार उस परिवर्तन पर ध्यान देती है जो किसी संस्थापक के अत्यधिक अमीर और प्रभावशाली बनने के बाद उसके आसपास घटित होता है। उनका अवलोकन है कि बड़ी संपत्ति और निरंतर प्रशंसा ऐसे लोगों का घेरा बना सकती है जो असहमति के बजाय स्वीकृति देते हैं। इससे नेता अपने निर्णयों के सामाजिक परिणामों, कर्मचारियों की चिंताओं या आलोचकों की वैध बातों से कट सकते हैं। यह केवल व्यक्तिगत अहंकार का प्रश्न नहीं है बल्कि संस्थागत जोखिम भी है। जब किसी कंपनी में संस्थापक का नियंत्रण बहुत अधिक हो, बोर्ड कमजोर हो और सार्वजनिक छवि को असाधारण महत्व मिले, तब गलत निर्णय को चुनौती देना कठिन हो जाता है। पुस्तक इस संस्कृति को तकनीकी प्रतिभा के रोमानीकरण से जोड़ती है। समाज अक्सर ऐसे नेताओं को नियमों से ऊपर, भविष्य का अकेला निर्माता या असुविधाजनक किंतु अनिवार्य प्रतिभा मान लेता है। स्विशर इस धारणा को चुनौती देती है। वे संकेत करती है कि प्रतिभा आलोचना से छूट नहीं दिलाती और सफलता नैतिक परिपक्वता का प्रमाण नहीं है। पाठक के लिए व्यावहारिक निष्कर्ष यह है कि किसी कंपनी का आकलन केवल उसके करिश्माई संस्थापक या आकर्षक उत्पाद से न किया जाए। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, श्रम संस्कृति और सुधार स्वीकार करने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अंत में, कठोर आलोचना के भीतर तकनीक की सुधार योग्य संभावना। शीर्षक में अ टेक लव स्टोरी का अर्थ पुस्तक की आलोचनात्मक धार के विपरीत नहीं है। स्विशर तकनीक से निराश है, पर उसे मूलतः निरर्थक या अनिवार्य रूप से विनाशकारी नहीं मानती। उनका प्रेम उस संभावना से है कि डिजिटल औजार लोगों को जानकारी, सेवाओं, संवाद और नए अवसरों तक पहुंचा सकते हैं। उनकी शिकायत यह है कि उद्योग ने इस संभावना को अक्सर निजी लाभ, तीव्र विस्तार और संस्थापक की प्रतिष्ठा के नीचे रख दिया। यह दृष्टि पुस्तक को केवल गॉसिप, प्रतिशोध या महान व्यक्तियों की जीवनी बनने से बचाती है। इसमें प्रश्न है कि बेहतर तकनीक संस्कृति कैसी हो सकती है। उत्तर किसी एक उत्पाद या कानून में नहीं दिया गया, बल्कि बेहतर निर्णय, अधिक विनम्र नेतृत्व, स्वतंत्र पत्रकारिता, सार्वजनिक दबाव और जिम्मेदार नियमन की आवश्यकता में निहित है। एआई जैसे नए शक्तिशाली औजारों के समय यह संदेश विशेष रूप से प्रासंगिक है। पुराने मंचों की गलतियों को केवल पिछली पीढ़ी की समस्या मानना जोखिमपूर्ण होगा। पुस्तक पाठक को तकनीक के प्रति दो अतियों से बचने को कहती है, अंध उत्साह और पूर्ण निराशा। उपयोगी रुख वह है जिसमें नवाचार का स्वागत हो पर उसके दावों, प्रोत्साहनों और हानियों की कठोर जांच लगातार चलती रहे। निष्कर्ष में, बर्न बुक उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो सिलिकॉन वैली, डिजिटल मीडिया, तकनीक पत्रकारिता या आधुनिक कॉरपोरेट शक्ति को समझना चाहते हैं। यह व्यवसाय इतिहास के विद्यार्थियों, पत्रकारों, नीति निर्माताओं, उत्पाद निर्माताओं और तकनीक के सामान्य उपयोगकर्ताओं सभी को एक आवश्यक दृष्टिकोण देती है। पुस्तक का बौद्धिक लाभ यह है कि यह तकनीक को तटस्थ औजार मानने की सरल धारणा तोड़ती है। हर मंच के पीछे स्वामित्व, प्रोत्साहन, नेतृत्व शैली और सामाजिक परिणाम होते हैं। व्यावहारिक रूप से यह पाठक को कंपनियों के बड़े दावों को अधिक सावधानी से परखना सिखाती है, जैसे किस समस्या का समाधान हो रहा है, किसका डेटा या ध्यान उपयोग हो रहा है और नुकसान होने पर सुधार की जिम्मेदारी कौन लेगा। समान विषय की कई पुस्तकों में या तो किसी कंपनी की सफलता कथा प्रमुख होती है या फिर तकनीक के खतरों पर दूरस्थ विश्लेषण। स्विशर की पुस्तक अलग इसलिए है कि इसमें 3 दशकों की रिपोर्टिंग, उद्योग के प्रमुख लोगों तक प्रत्यक्ष पहुंच और लेखक का निजी संस्मरण एक साथ आते हैं। इसका स्वर तीखा और स्पष्ट है, इसलिए कुछ पाठकों को लेखक की उपस्थिति बहुत प्रबल लग सकती है। फिर भी यही व्यक्तिगत टकरावपूर्ण शैली पुस्तक को ऊर्जा देती है। यह अंतिम निर्णय सुनाने के बजाय पाठक को शक्ति, प्रसिद्धि और जवाबदेही के संबंध पर अधिक सतर्क प्रश्न पूछने के लिए तैयार करती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं कारा स्विशर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।